सादिया के चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि थी। उसे लग रहा था कि जो वो चाहती थी वही हो रहा है। रिहान अब जान चुका था कि नूर और अरमान के बीच सिर्फ औपचारिक रिश्ता नहीं रहा। जब उसने अपने फोन में पुरानी सीसीटीवी फुटेज देखनी शुरू की तो एक एक करके कई रातों की रिकॉर्डिंग सामने आने लगी। असल में वो साकेत की फुटेज ढूंढ रहा था, जिसकी बात माहिरा ने की थी कि नूर का मंगेतर इकबाल के साथ आया था। हर रात एक ही दृश्य दिखाई देता था। नूर दो कप कॉफी लेकर ऊपर जाती हुई, सीधे सीढ़ियों से ऊपर जाती है। ऊपर की फुटेज नहीं थी, मगर इतना साफ था कि दूसरी तरफ से अरमान ऊपर आता होगा। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, कई रातों की फुटेज यही कहानी कह रही थी। रिहान की उंगलियां फोन पर जमी रह गई। दिल के अंदर जैसे आग भड़क उठी थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था, नूर और अरमान एक दूसरे के इतने करीब। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला, सादिया अंदर आई। रिहान ने तुरंत फोन बंद कर दिया। सादिया के चेहरे पर छिपी हुई खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसे यकीन था कि उसने नूर की सच्चाई रिहान के सामने ला दी है। अब रिहान खुद ही नूर को इस घर से निकाल देगा और तब रिहाना बेगम भी अपने बेटे को रोक नहीं पाएंगी। अगली सुबह घर का माहौल अजीब सा था। रिहान बिना नाश्ता किए ही जल्दी ऑफिस चला गया था। जब सादिया डाइनिंग टेबल पर आई तो रिहाना बेगम पहले से बैठी थी। रिहान कहाँ है, उन्होंने पूछा। वो सुबह ही ऑफिस चले गए, सादिया ने जवाब दिया। मैंने कहा था नाश्ता करके जाएं, मगर उन्होंने सुना ही नहीं। रिहाना बेगम चुप हो गई। फरीद खान कई दिनों से बाहर थे और अभी तक वापस नहीं लौटे थे। तभी नूर वहां आई। वो अभी तक नहाकर तैयार भी नहीं हुई थी। नाइट सूट में ही आकर उसने कुर्सी खींची। अच्छा हुआ तुम आ गई, रिहाना बेगम बोली। अकेले नाश्ता करने का मजा ही नहीं आता। ये सुनकर सादिया के दिल में चुभन हुई। वो सामने बैठी थी, फिर भी जैसे उसकी मौजूदगी की कोई अहमियत नहीं थी। असल में रिहाना बेगम अभी भी उससे नाराज थी। कल सबके सामने सादिया ने जानबूझकर उनकी बात दोहरा दी थी कि निकाह से पहले वो खुद भी रिहान के कमरे में रहती थी। उस बात ने उन्हें बहुत नाराज कर दिया था। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, दो लोग अकेले थोड़ी होते हैं। रिहाना बेगम भी हल्का सा मुस्कुराई। कई बार इंसान भीड़ में भी अकेला होता है। नूर उनकी बात का मतलब समझ नहीं पाई। उसे क्या पता था, इस घर में कोई उसे बचाने की कोशिश कर रहा है और कोई उसे बर्बाद करने की। इन सब के बीच वो बिल्कुल अनजान थी। अच्छा, मैं आपकी प्लेट में पराठा रख दूं, नूर ने पूछा। पराठा खाकर आपका मूड अच्छा हो जाएगा, रिहाना बेगम हल्का सा मुस्कुराई। नूर, अब तुम आ गई हो तो मेरे सामने बैठ कर खाओ। तुम्हें देख कर तो मेरा मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है, नूर हंस पड़ी। तो फिर ऐसा करें, आप मुझे अपने हाथ से खिलाइए, नूर ने ये बात बिल्कुल मासूमियत से कही थी। अगर कोई किसी को इतना लाड़ करे तो किसे अच्छा नहीं लगता। नूर तो उन्हें अपनी अम्मी जैसा ही मानती थी, लेकिन रिहाना बेगम के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। तुम नाश्ता करो बेटा, उन्होंने धीरे से कहा। ऑफिस पहुंचते ही रिहान सीधे अपने केबिन में गया। उसके दिमाग में रात से ही एक ही बात घूम रही थी, नूर और अरमान। लेकिन उससे भी ज्यादा उसे एक बात परेशान कर रही थी। कल माहिरा ने कहा था कि नूर की मंगनी साकेत से हो चुकी है या होने वाली है। अगर ये सच हुआ तो सब कुछ खत्म हो सकता था। इसलिए कुर्सी पर बैठते ही उसने तुरंत फोन उठाया और नूर के अब्बा इकबाल को फोन लगा दिया। हेलो चाचा, रिहान ने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए कहा। जी बेटा, बोलो, उधर से आवाज आई। रिहान ने थोड़ा सोचकर बात घुमाई। चाचा, वो जो लड़का आपके साथ आया था साकेत, उसका पर्स शायद हमारे घर में गिर गया है, क्या मैं उसे कुरियर करवा दूं? इकबाल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं नहीं बेटा, रहने दो, कुरियर की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी साकेत की हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया था, अपना सामान तक संभाल नहीं सका। रिहान ने मौका देखकर अगला सवाल पूछ लिया। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो आपके दामाद का मामला है, कहीं बात बिगड़ ना जाए। मेरा दामाद? इकबाल हैरान रह गया। नूर की मंगनी नहीं हुई है और ना ही होने वाली है, वो तो उसकी खाला का बेटा है बस। रिहान की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, मुझे लगा था कि नूर और साकेत की मंगनी होने वाली है, उसने सहज बनने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इकबाल ने साफ कहा। ठीक है चाचा, फिर जब आप आएंगे तब ले जाना, कहकर रिहान ने फोन काट दिया। क्या हुआ? पास खड़ी सुल्ताना बेगम ने इकबाल से पूछा। वो साकेत अपना पर्स रिहान के घर में गिराया है, इकबाल झुंझलाकर बोला। अजीब लड़का है, अपना पर्स तक संभाल नहीं सका, और उसकी माँ कहती है मेरी बेटी को संभालेगा। इतना कहकर इकबाल गुस्से में बाहर निकल गया। उधर ऑफिस में बैठे रिहान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मतलब नूर की कोई मंगनी नहीं हुई। वो कुर्सी से टिककर सोचने लगा। उसके मन में अब एक नया इरादा जन्म ले चुका था। उसे सिर्फ नूर को अरमान से दूर करना था, बस उसके बाद सब आसान हो जाएगा। रिहान अब तय कर चुका था, नूर सिर्फ उसकी होगी, और बहुत जल्द वो खुद नूर से ये बात कहने वाला था। आज बीच वाला दरवाजा बंद था। जैसे ही अरमान ने आदत के मुताबिक वो दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला। वो थोड़ा हैरान होकर बाहर गेट की तरफ आया, जहां रिहान के घर के सामने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था।
ये बीच का गेट किसने बंद कर दिया? अरमान ने पूछा। सिक्योरिटी गार्ड ने सीधा जवाब दिया, साहब घर में कोई नहीं है इसलिए बंद है। कहाँ गए सब? अरमान ने भौंय से कोड़ते हुए पूछा। मुझे तो नहीं पता साहब, नूर कहाँ है? अरमान ने तुरंत अगला सवाल किया। वो तो ऑफिस मतलब अपनी यूनिवर्सिटी चली गई। इतनी जल्दी? अरमान हैरान हुआ। गार्ड ने कंधे उचकाए। अब मुझे क्या पता साहब, लेकिन हाँ ये फाइल है, आपको रेहान साहब के ऑफिस में देनी है, सादिया भाभी ने कहा है। अरमान ने फाइल पकड़ ली, लेकिन उसी समय पीछे से निकलते हुए फैजान ने ये सब सुन लिया था। वो चुप खड़ा रहा, मगर उसकी आंखों में हल्की सी शंका उतर आई, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था घर से सिर्फ रेहान गया है, बाकी सब तो घर में ही है। फैजान की आदत थी, वो खुद भले ही सबको दिखाई ना दे लेकिन उसकी नजर से कोई बचता नहीं था। अरमान फाइल लेकर वापस अपने घर की तरफ चला गया, मगर फैजान सीधे सिक्योरिटी गार्ड के पास आ गया। अभी तुम कह रहे थे कि घर में कोई नहीं है, फैजान ने शांत आवाज में पूछा। नहीं साहब, मेरा मतलब था कि सिर्फ रेहान साहब बाहर गए हैं, बाकी सब तो घर पर ही हैं। मैं आपको बुलाने ही बोला था कि आपको नूर बीबी को छोड़कर आना है। फैजान ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। और ये किसने कहा कि मुझे नूर बीबी को छोड़कर आना है? गार्ड बोला, रेहान साहब ने कहा है, नूर बीबी को यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए ड्राइवर करीम जाएगा या फिर आप। फैजान हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा। उधर नूर अपने कमरे में तैयार हो चुकी थी। जैसे ही वो हल्के कदमों से हॉल में आई, उसे देखकर रेहाना बेगम ने कहा, नूर आज तुम्हें फैजान छोड़कर जाएगा। ये सुनकर नूर थोड़ा हैरान हुई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन पास बैठी सादिया के चेहरे का रंग बदल गया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसका भाई फैजान नूर को छोड़ने जाए। उसकी आंखों में हल्की सी जलन उतर आई। उसे क्या पता था वक्त कैसा खेल खेलने वाला है। एक दिन ऐसा आएगा जब नूर ही फैजान की जान बन जाएगी और वो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और बाकी सारी दुनिया बस उनके प्यार को देखती रह जाएगी। अरमान फाइल लेकर रेहान के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। सुबह का वक्त था और सड़क पर ट्रैफिक भी काफी था। एक बड़े चौराहे पर सिग्नल लाल हुआ तो उसे गाड़ी रोकनी पड़ी। उसी वक्त उसकी नजर सामने खड़ी एक कार पर पड़ी। कार की ड्राइविंग सीट पर फैजान था और उसके साथ वाली सीट पर नूर बैठी थी। अरमान की आंखें एक पल के लिए ठहर गईं।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना याद रखें। आपके कमेंट हमें लिखने का हौसला देते हैं।